ओम शांति। आप सभी भी रिटर्न में यही कहेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। स्वर्णिम संसार के लिए स्वर्णिम संस्कृति, इस विषय को लेकर यहाँ 3 दिन के लिए आप विशेष इसका अनुभव करने पधारे हैं। भारत के कोने कोने से आप कलाकार यहाँ पहुँचे हैं, तो अवश्य आप में कला का गुण तो है ही, परंतु जिस प्रकार एक मंच पर कोई कलाकार अपनी कला प्रदर्शित करता है, वो मंच तो छोटा सा होगा, परंतु आप केवल उस छोटे मंच के ही कलाकार नहीं हैं, विश्व को भी एक मंच कहा गया है, विश्व मंच, जिसको शेक्सपियर ने कहा, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रिस्पेक्टिव रोल्स। तो हम सभी विश्व रंग मंच के भी अभिनेता हैं। तो जिस प्रकार एक मंच पर अभिनय करते समय व्यक्ति कितना ध्यान रखता है, इसी प्रकार क्या विश्व मंच पर कर्म करते भी हम इतना ध्यान रखते हैं? क्या ध्यान रखना है, कैसे रखना है, ये तो आप बहुत कुछ हमारे अलग प्रवचनों में सुनेंगे, लेकिन ये अभिनेता है कौन, हम कौन हैं? ये कितना बड़ा प्रश्न है जो सदियों से चलता आ रहा है। सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो बहुत बड़े फिलोसोफर्स होकर के गए हैं। उन्होंने यही प्रश्न किया, अपने आप को जानो, क्या हम नहीं जानते? अवश्य नहीं जानते, इसीलिए कहा क्योंकि अभिनेता अभिनय तो करता है मंच पर, लेकिन जो अभिनय कर रहा है वही उसका वास्तविक व्यक्तित्व नहीं है। अपने व्यक्तित्व में तो कोई और है, लेकिन अभिनय करने के समय उसको जो रोल मिला है वो करता है। कई विलियन फिल्मों में पार्ट बजाते हैं, लेकिन वे अपने लाइफ में बहुत ऊंचे हैं, बहुत अच्छे विचारों के हैं, परंतु विलियन का रोल उन्हें मिला है इसलिए उनको बजाना पड़ता है। वैसे ही कोई हीरो एक्टर बनता है किसी फिल्म में, लेकिन उसका व्यक्तिगत जीवन कोई इतना अच्छा हो ये जरूरी नहीं है। इसी प्रकार हम देखते हैं इस संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करने वाला अभिनेता ये कभी नहीं भूल सकता कि मेरा वास्तव में अस्तित्व क्या है, तो मैं कौन हूं, हम कभी भूल नहीं सकते। लेकिन आज कैसी विडंबना कि हम ये भूल चुके हैं, और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि इस जीवन रंगमंच पर आकर के, संसार रूपी रंगमंच पर आकर ये जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, लेकिन जिस जीवन के लिए कहा गया है कि यह भगवान ने दिया है जीवन, ईश्वर की देन है, मानव जीवन एक वरदान है, एक प्रभु प्रसाद है, हीरे तुल्य जीवन है। लेकिन जैसे कबीर ने कहा, इस हीरे तुल्य जीवन को कहीं हम कौड़ी के समान तो नहीं गंवा रहे हैं। परंतु अगर जीवन का लक्ष्य हमें पक्का होगा तो अवश्य हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकेंगे। तो ये जो प्रातःकालीन सत्र आपको मिलेंगे, ये उस लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए वो शक्ति दिलाएंगे जिसको हम राजयोग सत्र कहते हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में राजयोग की शिक्षा दी जाती है। वैसे देखा जाए, योग शब्द कोई नया नहीं है। संस्कृत के युज शब्द से निकला है ये शब्द योग, जिसका बहुत सरल अर्थ है। इसका अर्थ होता है किसी भी प्रकार का जोड़, उसको योग कहते हैं। चाहे उसको जोड़ कहिए, चाहे मिलन कहिए, चाहे संबंध कहिए, मिलाप कहिए, किसी की याद कहिए, ये सब योग के ही विभिन्न स्वरूप हैं। उस शब्द को समझने के लिए उसका ऑपोजिट शब्द समझना सहज है। योग का विरुद्ध शब्द है वियोग, और वियोग का अर्थ होता है बिछड़ना, दूर जाना, अलग होना। तो उसकी भेंट में योग का अर्थ होता है मिलना। किसी भी प्रकार के मिलन को योग कहा जाता है। अगर हम इसको और विस्तार से देखें तो योग के तीन स्तर हैं। एक स्तर है भौतिक चीजों का मिलन, जिसमें हम वस्तुओं का मिलन बता सकते हैं। दो व्यक्ति मिल करके कार्य करते हैं, वो भी योग है, उसको सहयोग कहते हैं। दो तारों को जोड़ते हैं, वो भी योग है। दूध में चीनी मिलाते हैं, वो भी एक योग है। और इस योग से क्या होता है, जिससे मिलन होता है उसका गुण मिल जाता है। दूध में चीनी मिलाई तो दूध मीठा हो जाएगा, तो दूध और चीनी के योग से मीठा दूध हो जाता है। हिंदी भाषा में जब हम गणित करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ते हैं, वस्तुओं को जोड़ते हैं या पैसे को जोड़ते हैं, तो लास्ट में क्या लिखते हैं, कुल योग लिखते हैं ना, कुल योग माना टोटल सम। तो जोड़ा और वो योग बन गया। इस प्रकार वस्तुओं को तो हम सहज रूप से जोड़ लेते हैं और उसको हम योग कहते हैं। परंतु अगर हम उसका दूसरा स्तर देखें तो वो मानसिक योग, मानसिक मन से भी योग होता है। हम किसको याद करते हैं तो वो योग है। कई बार हम किसी व्यक्ति को बहुत याद करते हैं और वो पहुंच जाता है, उसी वक्त हम उनकी बात ही कर रहे थे और वो पहुंच गया, तो हम कहेंगे कि अरे क्या योग था मेरा, अभी अभी आपको मैंने कितना याद किया और आप आ गए। तो मानसिक स्तर का भी योग होता है, टेलीपैथी होती है। हम किसको याद करते हैं, हमारी याद उसको पहुंचती है, वो भी एक योग है। लेकिन हम यहां जिस योग की बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक स्तर का योग है, और वह है आत्मा का मिलन परमात्मा के साथ। अब ये योग सबसे उत्तम है, सबसे ऊंचा है, क्योंकि परमात्मा से मिलन होता है। वस्तुओं का वस्तुओं से मिलन कोई बड़ी बात नहीं है। आप रेडियो ऑन करते हैं, ट्यूनिंग करते हैं, जो रेडियो स्टेशन आपको चाहिए उस रेडियो स्टेशन की आवाज सुनने के लिए आप उसी की ट्यूनिंग करते हैं, वही मीटर बैंड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ आपको पता है, और आप उस अनुसार अपनी सुई को उस स्थान पर रखते हैं, तो आपका रेडियो रिसीवर उस रेडियो स्टेशन से आवाज कैच करता है। तो ये एक योग है। हम इसके कई और भी रूप देखते हैं। बिजली घर से भी योग होता है, तो बिजली घर से जो करंट है वो आपके घर में आती है। फिर हम जैसे बताया दूध में चीनी मिलाई, ये योग है। अब मानसिक स्तर उनसे थोड़ा ऊंचा है। आप किसी को याद करते हैं, मान लो कोई बात याद आ गई और वो कोई दुखद घटना थी, वो दुखद बड़ा ट्रैजिक इंसिडेंट था आपके जीवन में, और हो सकता है कई साल पहले वो बात घटी हो, अभी नहीं, अभी न वो व्यक्ति है, न स्थान है, न कोई बात है, न परिस्थिति है, लेकिन आज भी अगर आप उस घटना को याद करते हो, वो दुखद घटना थी, कितने दिनों तक आप उसको भुला ही नहीं सके थे, आज भी अगर उसको भूल से भी याद कर लेते हो तो वो दुख की अनुभूति आपको उसी वक्त महसूस होने लगती है। चेहरा उदास हो जाएगा, आपसे कोई पूछ लेगा क्या बात है, आप आज उदास क्यों हो, आप कहेंगे क्या बताऊं, कोई बात याद आ गई। इसके विपरीत एक सुखद घटना अगर आपको याद आई तो चेहरा खिल जाएगा, अब वो बात उस समय कुछ नहीं है लेकिन काफी समय वो सुखद घटना घटी थी और आप याद करते मुस्कुरा देते हो, तो भी लोग पूछेंगे क्या बात है आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो, ओ कोई अच्छी बात याद आ गई। तो ये भी एक योग है जिसमें हम व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई घटना, कोई स्थान, कोई परिस्थिति, कोई बात को हम याद करते हैं या उसकी याद आ जाती है अपने आप, ये सब योग है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें, हम सब योगी हैं। अगर कोई आपसे पूछे आप योगी हो, आप कह सकते भाई मैं कहाँ योगी हूँ, क्योंकि योगी की एक कल्पना की जाती है कोई सन्यासी से, तो हम कहाँ योगी हुए, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो बाल बच्चे वाले हैं, बड़ी जिम्मेवारी वाले हैं, अगर हम योगी बन जाएंगे या सारे ऐसे योगी बन जाएंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। लेकिन योगी अर्थात केवल सन्यासी बन जाना नहीं है, हर एक व्यक्ति योगी है, क्योंकि मन जिसके विषय में सोचता है उसके साथ उसका योग है, तो मन तो सदा ही सोचता रहता है हर वक्त। आप नहीं सोचना चाहते हैं तो भी ये तो सोच दे ही रहे हैं ना मन को कि मुझे नहीं सोचना है, तो ये भी तो सोच दे रहे हैं, तो सोच तो रहा है मन। इसलिए मानसिक रूप से हम सब योगी हैं, लेकिन यहां हम आपको वो आध्यात्मिक स्तर बताना चाहेंगे कि आध्यात्मिक स्तर से योगी कैसे बनो। आत्मा का योग परमात्मा के साथ हो, ये है आध्यात्मिक स्तर का योग। अब एक हिसाब से आप उसके भी योगी हो, क्योंकि जब जब दुख की घटना होती है, कोई दुखद बात आती है, भले उस घटना को आप याद करते हो, वो कोई ऐसी दुख की घड़ी आई, बहुत कष्टदायक घड़ी आई, उस समय आपको भगवान भी बहुत याद आता है, हे भगवान रक्षा करो, हे भगवान मदद करो, हे भगवान शक्ति दो, आप ईश्वर से मांगते हैं उस समय, प्रार्थना करते हैं, तो दुख में आप ईश्वर को भी याद करते हो, तो उस हिसाब से आप परमात्मा को याद तो करते ही हो। लेकिन राजयोग हमें इनसे थोड़ा और आगे ले जाता है। जैसे कबीर का दोहा है, दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे न कोई, पर उसके बाद का वाक्य उनसे भी ऊंचा है कि जो सुख में सिमरण करे तो दुख काहे को होए, सुख में सिमरण ना किया दुख में करता याद रे। तो दुख में ही केवल हम भगवान को याद करते हैं, सुख में तो उसको भूल जाते हैं। तो राजयोग हमें कहता है कि आप सुख में भी उसको याद करो तो कभी दुख आपको आएगा ही नहीं। जैसे बिजली घर से कनेक्शन हर वक्त है तो अंधेरा होगा क्यों? होगा ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन पूरा है। पर अभी अगर अंधेरा हो जाए तो जरूर कहेंगे बिजली घर से कनेक्शन कट गया। अब फिर देखते दूसरे कमरे में तो बिजली जल रही है, यहाँ क्यों नहीं है? तो कहेंगे जरूर यहाँ इस हॉल का जो मीटर होगा उसमें वो फ्यूज उड़ गया होगा। हाँ चलो फ्यूज को ठीक करो, बिजली घर से तो बिजली है तो फ्यूज को ठीक करना होता है। इसी प्रकार हम परमात्मा को केवल दुख के समय ही याद करते हैं, ये कौन सी बड़ी बात है? जैसे कहा जाता है ना, बीमारी आई तो डॉक्टर को याद करते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर की सलाह पर सदा चलो तो क्या होगा? बीमारी आएगी नहीं। इसीलिए कहा जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। ऑफकोर्स ट्रीटमेंट क्योर बेटर देन इग्नोर, उसको इग्नोर ही करो ये तो ठीक नहीं है, इसलिए ट्रीटमेंट तो करानी पड़ेगी, परंतु प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। बीमारी आए ही नहीं, पहले से ही सावधान हो जाओ। आप किसी वातानुकूल स्थान पर बैठे हैं तो चाहे बाहर कितनी भी गर्मी होगी, आपका कमरा एयर कंडीशन्ड है, गाड़ी एयर कंडीशन्ड है, दुकान एयर कंडीशन्ड है, तो बाहर चाहे कितनी भी गर्मी होगी आपको महसूस नहीं होगी, क्योंकि आपने अपने वातावरण को अपने अनुकूल एक टेम्परेचर पर रख दिया है। तो बाहर 40 डिग्री होगी तो भी आपको 24-25 डिग्री का ही अनुभव होगा, वो बाहर का प्रभाव आपको नहीं लगेगा। तो ये भी मन को कंडीशनिंग करने की बात है। आज ये मन इतना चंचल क्यों है? क्योंकि हम खुद को भूल गए हैं, उस ईश्वर को नहीं पहचानते, जीवन का लक्ष्य ही भूल गए हैं। आज कोई एक्टर एक्टिंग करते समय ये भूल जाए कि मैं क्या एक्टिंग कर रहा हूं तो क्या होगा? एक कहानी सुनाते ना, एक जोक है, पता नहीं सच्चा है क्या, कि एक बार रामायण का मंचन हो रहा था रामलीला मैदान में। तो रामायण का मंचन हो रहा था तो उसमें हनुमान जी को आना था। अब हनुमान जी जो एक्टर थे वो बीमार पड़ गए, अब कौन करे? तो दूसरे एक्टर को बुला लिया और कहा कि आप हनुमान का की एक्टिंग करो। तो कहा मुझे क्या करना होगा? तो कहा आपको कुछ नहीं करना है, बस आप आ जाओ और कहो कि मैं बजरंग बली हनुमान हूं, बस यही आपको कहना है, एक ही लाइन है बस, और कुछ नहीं कहना है। तो याद कर लिया, मैं बजरंग बली हनुमान हूं, मैं बजरंग बली हनुमान हूं। रावण के सामने पहुंचना था। अब जैसे ही मंचन शुरू हुआ ड्रामा, तो रावण आ गया। तुम कौन हो? चोर से पूछा। अब वो भूल गया वाक्य, क्योंकि गुस्से में रावण ने पूछा तुम कौन हो, तो कहा मैं रामचंद्र साइकिल वाला। एक्टिंग करना था हनुमान का, परंतु वास्तव में तो वो रामचंद्र साइकिल वाला था, पकड़ लिया था, बस तुमको उस जैसा लग रहा था, पर वो भूल गया और अपना असली रूप उसको वो ही बता दिया, डर गया कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं रावण से। तो क्या है कि हम भी कई बार यही सोचते हैं, हम क्यों आए हैं इस संसार में, क्या है जीवन का लक्ष्य? किससे पूछो क्या है जीवन का लक्ष्य, तो कोई कह देगा बस खाओ पियो मौज करो। हाँ खाओ पियो मौज करो, पर खाओ पियो मौज करो यही तो लक्ष्य नहीं है ना। कोई कहेगा हाँ घूमो फिरो मौज करो, कोई कहेगा खूब संग्रह करो बस, क्या यही जीवन का लक्ष्य है? क्योंकि अगर खूब संग्रह भी कर लिया, जब अंतिम घड़ी आएगी सब यहीं रह जाना है, न मकान चलेगा, न जमीन चलेगी, न आपका आपकी आपका बैंक बैलेंस चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा। आप चलेंगे तो फिर भी केवल आपके कर्म, और उन पर तो ध्यान दिया ही नहीं, केवल धन संपत्ति मान शान या जमीन जायदाद मकान यही इसी पर ही ध्यान दिया, स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दिया। तो परिणाम यही होगा कि सब कुछ पर पानी फिर जाएगा, आप तो हाथ खाली जाएंगे। इसीलिए जीवन का लक्ष्य जानना भी बहुत जरूरी है। और ये जब हम कहते हैं हम भगवान के घर से आए हैं, भगवान के पास जाना है, गीत भी गाते कहां तेरी मंजिल कहां है ठिकाना, मुसाफिर बता दे कहां तुझको जाना, ये जीवन की सच्चाई है, हम उसको नकार नहीं सकते। और केवल एक बाह्य प्रलोभनों में फंसते रहेंगे तो ये सुंदर जीवन जो भगवान का प्रभु प्रसाद है कहीं हम उनसे वंचित न हो जाएं। इसलिए राजयोग हमें बहुत सुंदर लक्ष्य देता है, कैसा जीवन जियो। अगर मन सदा उस परमात्मा में लगा है तो उस परमात्मा से हम इतनी शक्ति ले लेते हैं, जो मेरे सामने कितनी भी समस्याएं आए, आपदाएं आए, विपत्तियां आए, लेकिन उस शक्ति से हम उनका सहज सामना कर सकते हैं। हमें ये नहीं लगेगा कि ये जीवन एक जंजाल है, एक झंझट है, एक दुखद स्थिति है, नहीं, जीवन तो एक गेम, एक खेल है। परंतु उसके लिए अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाना पड़ेगा। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी अलिप्त रहता है, वैसे ही अगर हम इस संसार में रहकर भी मन उस परमात्मा में लगाएं और फिर कर्म करें तो ये जीवन कमल फूल समान सुंदर बन जाएगा। अर्थात संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार सागर है, जीवन एक नैया है, परंतु नैया में बैठा हुआ व्यक्ति सागर पर चलता है, जाता है, पर यह कभी नहीं भूलता कि सागर का जल नाव में ना जाए। अगर ये भूल जाए और सागर का जल आने लगे तो डूब जाएगा। तो संसार सागर का जल जीवन नैया में ना आए, संसार में भले रहो पर संसार आप में न रहे, ये है राजयोग का लक्ष्य, जिसमें हम अपना मन सदैव उस परमात्मा की याद में करते हैं। तो कर्म बहुत अच्छा करेंगे, उनसे शक्ति लेंगे। जब भी कोई एक्टर एक्टिंग करता है, कोई आर्टिस्ट चाहे डांस करेगा, गीत गाएगा, पहले ईश्वर को याद करेगा। हम देखते हैं डांसर्स पहले आकर के वंदन करते हैं, हाथ जोड़ेंगे, पहले धरती को करते हैं हाथ जोड़ते हैं, पर है तो उस परमात्मा की याद, क्योंकि उसकी याद से जो कर्म किया वो शक्तिशाली हो जाएगा, फिर उसका फल ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए कहते हैं ना, कर्मणे वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम्। कर्म पर पूरा अधिकार रखो पर फल ईश्वर पर छोड़ो, फल की चिंता मत करो, आप अच्छे से अच्छा कर्म करो बस। परंतु वो फल की चिंता तब नहीं होगी जब वो कर्म ईश्वर की याद में किया और फिर उसको समर्पित कर दिया। इसलिए उसकी याद हर कर्म में आवश्यक है। इसलिए राजयोग हमें यही सिखाता है कि हर कर्म उनकी याद में करो तो आपका कर्म इतना ऊंचा बन जाएगा और ये जीवन सार्थक बन जाएगा। तो इसीलिए इस आध्यात्मिक स्तर को हमें समझना है, जिसके आधार से हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकेंगे। अब राजयोग भी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें राजा बनाता है ये योग। योगी जरूर हो पर राजयोगी अर्थात अपने इंद्रियों का राजा। आज हम देख रहे हैं कि मनुष्य अपने इंद्रियों का गुलाम बन गया है। जहाँ इंद्रियां खींच के ले जाती ना, वहीं मन चला जाता है। जीभ रस, कन रस, स्पर्श रस, नेत्र रस, गंध रस, ये पंच इंद्रियों के रस मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। इसलिए मन आज इतना चंचल हो गया है। तो जब हम कहते इस मन को परमात्मा में लगाओ, तो यही शिकायत है, क्या करे, मन तो लगता नहीं। क्योंकि मन तो एक घोड़ा है, मन तो एक बंदर के समान है, मन तो हवा से भी तेज है। फिर और आगे कहेंगे मन तो पापी है, मन तो नीच है, मन तो न जाने कहाँ कहाँ भागता रहता है। इस मन को वश करना बड़ा मुश्किल है, ईश्वर में कैसे लगेगा। अर्जुन की भी यही शिकायत थी, कैसे लगाएं मन को हे प्रभु तुम्हारे में। तब भगवान ने दो शब्द दिए, वैराग्य और अभ्यास, इससे मन मेरे में लग सकता है। तो कईयों ने वैराग्य शब्द सुन करके समझा कि ये तो सन्यासियों का काम है, ये हमारा नहीं, हम तो अभी दुनिया ही कहाँ देखिए। और चाहते तो हैं कि मन ईश्वर में लग जाए। तो क्यों नहीं लगता, क्योंकि इंद्रियां मालिक हो गई है, मन उनके उनका गुलाम हो गया। अब राजयोग में हम इंद्रियों का मालिक बनते हैं, इंद्रियों का पहले मालिक बनो, क्योंकि इनका राजा कौन है, वो मैं हूं, अपने असली रूप को पहचानो। फिर इसके बाद हम अपने मन का भी राजा बन सकते हैं। मन आज इतना चंचल है हम कहते हैं, लेकिन मन घोड़े समान भागता रहता है और हम जो चाहे सोचना वो नहीं सोच पाते, और जो भूलना चाहे वो भूल नहीं पाते हैं। कैसी विडंबना है, हम चाहते कोई बात याद आए वो याद ही नहीं आती, और कोई बात इतनी याद है जो हम भूलना चाहते भूलती नहीं। तो मन भी वश में कहाँ हुआ, तो राजयोग से मन भी वश में ला सकते हैं। और तीसरी बात है कि हम सबका दिल भी जीत सकते हैं राजयोग से। राजयोगी सबका दिल जीतता है, क्योंकि वो हर कर्म परमात्मा की याद में करता है, तो उसके जीवन में सद्गुण होते हैं। जिन सद्गुणों से अपने जीवन को चलाता है तो सबका दिल जीत लेता है। तो राजयोगी राजा है, इंद्रियों का राजा, फिर अपने मन का भी राजा, फिर सबके दिलों का भी राजा। और जो सबका दिल जीत सकता है वो सारे विश्व को भी जीत सकता है। जिसको कहा कि नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी बने, मानव देव बन जाए। तो कैसे हम श्रेष्ठ बन सकते हैं, मानव देव बन सकता है, ये राजयोग सिखाता है। तो हम आगे देखेंगे कि राजयोग हमें कहां तक ले जाता है, उस परम सत्ता तक। राजयोग अर्थात जो ऊंचे से ऊंचा परमात्मा है, उसमें मन की तार लगाना, मन को जोड़ना। क्योंकि कई समझते हैं कि चलो कोई भी इष्ट को मैं मानता हूं, मैं उसी में मन लगाता हूं। कोई हनुमान का भक्त होगा, कोई राम का भक्त होगा, कोई कृष्ण का भक्त होगा, कोई देवी का भक्त होगा, जिसका वो भक्त है समझते हैं मैं उसी में मन लगाता हूं। लेकिन राजयोग के अनुसार हम अपना मन उस सर्वोच्च शक्ति में लगाते हैं। क्योंकि जिसको भी हम समझो याद करते अपने इष्ट को, उस वो इष्ट भी किसी और को याद कर रहा है जो उनसे ऊंचा हो गया। हम हनुमान को याद करते पर हनुमान तो राम को याद कर रहा है। फिर राम ने शिव को याद किया शक्ति लेने के लिए, रावण पर विजय पाने के लिए। तो हम किसको याद करें, हनुमान को करें, राम को करें, शिव को करें, किसको करें? तो राजयोग हमें सिखाता है उस सर्वोच्च शक्ति को याद करो, जिसके लिए कहा गया ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे से ऊंचा भगवान। जिसके ऊपर कोई शक्ति नहीं है, जो उसको किसी को याद करना पड़े शक्ति लेने के लिए। तो वो सर्वोच्च सत्ता को भी हमें पहचानना होगा, पहले खुद को पहचानना होगा, फिर उस परमात्मा को पहचानना होगा जिससे हमें मन की तार जोड़नी है। तो राजयोग अर्थात उस सर्वोच्च सत्ता से मन की तार जोड़ना, और उसके लिए जो विधि हम बताते हैं, ये विधि भी बहुत ऊंची है। कई लोग समझते भगवान तक पहुंचना माना जैसे किसी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना है। तो कई रास्ते हैं, कई रास्तों से हम चोटी तक पहुंच सकते हैं। माउंट आबू आने के लिए बहुत रास्ते हैं, पहाड़ों पर चढ़ के भी कई लोग आ जाते हैं। पर आपने कौन सा रास्ता चुना यहाँ आने के लिए? पैदल तो नहीं आए ना, कैसे आए? बना बनाया रोड है, गाड़ी में बैठ के पहुंच गए आधे पौने घंटे के अंदर, कितना सहज। तो राजयोग वो सहज मार्ग है जिससे हम सहज उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं बिना किसी कठिनाई के, क्योंकि उस परमात्मा पिता की हम संतान हैं। तो परमात्मा पिता है, वो पिता क्यों चाहेगा कि मेरे बच्चे बहुत कष्ट उठा करके मेरे से मिले, बहुत कष्ट पाए तब मेरे से मिले। और ही पिता देखता है कि मेरे बच्चे को कष्ट है तो खुद भागा भागा जाएगा बच्चे के पास, नहीं बेटा कष्ट मत उठाओ। तो परमात्मा क्यों चाहेगा कि कष्ट उठा के मेरे तक पहुंचो? नहीं। तो बहुत सहज विधि है। और तीसरी बात कि जो प्राप्ति है वो भी बहुत ऊंची है। जीवन में सबसे ऊंची प्राप्ति हम किसको कहेंगे, किसको कहेंगे? कई कहते बहन जी भगवान की दया से मेरे पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, लेकिन बस शांति चाहिए, शांति बस और कुछ नहीं, शांति चाहिए। तो सबसे ऊंची प्राप्ति कौन सी हुई? शांति। तो परमात्मा की याद से वही प्राप्ति होती है जो हम जीवन में चाहते हैं। शांति मिले, सुख मिले, खुशी मिले, प्यार मिले, शक्ति मिले, ये सूक्ष्म चीजें हैं, वही राजयोग से हमें प्राप्त होती है। और वो प्राप्त हो जाए ना तो ये बाकी सब तो बड़ा सहज है पाना, ये तो परछाई है, परछाई के पीछे नहीं दौड़ना होता है, रोशनी के पास जाना होता है। अगर परछाई के पीछे पीछे दौड़ेंगे तो परछाई कभी हाथ आएगी क्या? इच्छाएं तो कभी पूरी नहीं होगी। लेकिन परछाई को पीठ दे दी और प्रकाश की ओर गए तो परछाई आपके पीछे पीछे आएगी, वो छोटी होती जाएगी, और जैसे प्रकाश के पास पहुंचेंगे परछाई ओझल हो जाएगी, गुम हो जाएगी, क्योंकि प्रकाश के आगे परछाई खड़ी नहीं हो सकती। परंतु परछाई की तरफ गए तो रोशनी से भी दूर जाएंगे, परछाई भी हाथ नहीं आएगी। इसीलिए कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दुविधा में गए वो माया के पीछे गए तो राम से भी वंचित हो गए, और वो माया तो हाथ आनी नहीं है तो उनसे भी वंचित हो गए, दोनों ही गए। इसीलिए परमात्मा कहते उस सर्वोच्च प्राप्ति को समझो, और वो प्राप्ति आपके पास ही है, वो आपको बाहर से नहीं मिलेगी। इसीलिए कहते अगर आपको शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, अंदर में आपको सब कुछ मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। अब अंदर कैसे जाएं? वास्तव में योग वही कला सिखाता है। तो हम देखेंगे राजयोग क्या है। राजयोग जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है और हमें जीने की कला सिखाता है। जीना भी एक कला हो जाए, केवल मंच पर कला प्रदर्शित करना ये बड़ी बात नहीं है, पर जीवन ही कला है। आज एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा है, टांगे मजबूत है तो भी गिर जाता है, मान लो पत्थर आ गया, कोई उबर खाबड़ है, गिर गया, ठोकर लगी, और दूसरा व्यक्ति रस्सी पर चल रहा है तो भी गिरता नहीं है, तो क्यों नहीं गिरा वो? और रास्ते पर चलता हुआ गिर जाता है और वो नहीं गिरता, रस्सी पर चल रहा है तो भी अंतर क्या? ये नहीं कि केवल वो रस्सी पर चल रहा वही कलाकार है, नहीं, रास्ते पर चलने वाला चल तो रहा है ना, कर्म तो वही है, वो भी चल रहा है। लेकिन जो रस्सी पर चल रहा है उसके अंदर में कई और बातें हैं जो वो रास्ते पर चलने वाला भूल गया। वो क्या है? उसके अंदर एकाग्रता है, उसके अंदर लक्ष्य है, उसके सामने मंजिल स्पष्ट है, उसके पास बैलेंस है। मानो ये सारी बातें, इसीलिए गिरता नहीं है। और रास्ते पर चला, ध्यान हट गया तो गिर गया, कोई भी लक्ष्य नहीं था। तो परमात्मा हमें क्या सिखाते हैं कि जीवन जीना भी एक कला बन जाए। वो जीवन जीना कला राजयोग सिखाता है। इसलिए राजयोग आत्मा व परमात्मा की अनुभूति का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, और उसको हम समझेंगे। कई लोग कहते हैं मैं तो कर्म योगी हूं, मैं तो कर्म से ही योग करता हूं, कर्म ही मेरी पूजा है। कहते ना, कोई नर्स है वो कहेगी नर्स प्रोफेशन इज माय गॉड, यही मेरी पूजा है, आई एम मैरिड टू माय प्रोफेशन, ऐसे कई कहते हैं, आई एम मैरिड, क्योंकि वही मेरा सर्वस्व है। तो कर्म ही मेरी पूजा है, परंतु इसका अर्थ हमें समझना होगा। कर्म मेरी पूजा है का अगर अर्थ केवल इतना ही निकालते कि कर्म में ध्यान, बस कर्म ही सब कुछ है, परंतु उससे भी धोखा खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो हमने बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिली, तो कई लोग बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, बहुत देखा है ना, सफलता नहीं मिली, छोड़ो। परंतु अगर कर्म से योग नहीं है, योग ईश्वर से है, कर्म हाथों से कर रहे हैं पर योग ईश्वर से है, और अंदर में ये हिम्मत है, ये ईश्वर की मदद है, कोई बात नहीं, असफलता मिली तो क्या हुआ, ईश्वर तो मेरे साथ है, वो मुझे अवश्य पार ले जाएगा, वो मुझे जरूर मंजिल दिलाएगा, मुझे सफलता दिलाएगा, कोई बात नहीं। असफलता कोई हार थोड़ी होती है, फेलियर्स आर पिलर्स टू सक्सेस। हम इसको हार क्यों मान ले, इट्स नॉट अ डिफीट, देर ओनली पिलर्स ऑफ टू सक्सेस, अल्टीमेटली आई विल सक्सीड। लेकिन लक्ष्य है कि परमात्मा मेरे साथ है, इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। इसलिए भगवान साथी बनाया तो कर्म में असफलता तो मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है सफलता, कोई जन्म से ही थोड़ी कोई सफल हो जाता है। परंतु वो असफलता हार नहीं है, क्योंकि शक्ति ईश्वर से ले रहे हैं हम, इसीलिए जो परिणाम ईश्वर पर सौंप दो ना, आप क्यों घबराते हो? इसलिए कहते अब सौंप दिया इस जीवन का भार तेरे हाथ में, जीत भी तेरे हाथ में, हार भी तेरे हाथ में। तो वो अगर हम करना चाहें तब ये जीवन जीने की कला है। नहीं मुझे सफल में क्यों नहीं हुआ, और कई लोग तो एक ही बार असफल हुआ जाके सुसाइड कर लेंगे, क्या दिखाऊं दुनिया को मुंह, अरे किस ऐसी क्या बात है, जीवन उनसे ज्यादा कीमती है, वो चीज क्या थी, वो तो दोबारा आ सकती है। तो इसीलिए राजयोग क्या है, ये सारे योग उसके साथ संलग्न है। सबसे पहला है ज्ञान योग, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया इस संसार में, जीवन का लक्ष्य क्या है, कहां पहुंचना है मुझे, भगवान कौन है, कैसे मैं मिल सकता हूं, ये सारा ज्ञान हमें मिलता है राजयोग में। केवल एक मंत्र नहीं है जो हम आपको देंगे और कहेंगे बस ये जाप करते रहो, कोई मंत्र से योग थोड़ी करना है, परमात्मा से योग करना है। इसलिए ज्ञान के आधार पर योग है। दूसरा ये बुद्धि योग है और सहज योग है, इसमें केवल बुद्धि को लगाना है। बुद्धि, समझ, ये समझ के आधार से हम परमात्मा में मन को लगाते हैं। मन को बुद्धि की शक्ति से लगाना है, अंधविश्वास से नहीं, समझ से लगाना है। फिर ये कर्म योग भी है, कर्म हाथ कर रहे हैं पर मन बुद्धि ईश्वर के साथ है और वो कर्म श्रेष्ठ बन जाएगा। इसीलिए कहा योग कर्मेषु कौशलम, योग कर्मों की कुशलता का ही दूसरा नाम है। क्योंकि जब परमात्मा में मन है तो हमारे कर्म बहुत ऊंचे बनेंगे और वो सफलता अवश्य दिलाएंगे। और फिर ये भक्ति योग भी है। भक्ति राजयोग से अलग नहीं है। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं, भक्ति का सच्चा अर्थ होता है प्रेम, ईश्वर से प्रेम। हम अपने आप से पूछें, ईश्वर से हमारा कितना प्रेम है, प्रेम है या स्वार्थ है? भगवान से कुछ मिला तो भगवान बहुत अच्छे, और भगवान ने नहीं दिया तो भगवान जैसा बुरा कोई नहीं। दुनिया में भी ऐसे है ना, किसी से कुछ मिला तो ये कितना अच्छा आदमी है, देखो मुझे मदद किया, और नहीं मदद की तो इस जैसा बुरा कोई नहीं, मदद नहीं की मुझे। तो भगवान के साथ भी ऐसा ही व्यवहार, लेकिन हम भूल जाते, इफ आई डोंट गेट इट मीन्स आई डोंट डिजर्व। ये नहीं कि जो डिजायर है वो सब पूरा हो जाएगा, आई डोंट डिजर्व दैट्स व्हाई आई डिडंट गेट। तो इसीलिए हम भगवान से नफरत करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए भक्ति योग माना वो सच्चा प्रेम ईश्वर के प्रति, जिसमें हम हमारे अंदर समर्पण मयता की भावना हो ईश्वर के प्रति। समर्पण मयता की भावना में तो लेना नहीं होता है, देना होता है। प्रेम में लेना नहीं होता है, त्याग होता है। तो परमात्मा से भी हमारी सच्ची प्रीत हो, ये कहेंगे सच्चा राजयोग। फिर उसके बाद है संन्यास योग। तो संन्यास योग का मतलब ये नहीं सन्यासी बन जाना, परंतु जो बुराइयां हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, विकार हैं, अवश्य उनका तो संन्यास करना ही है। क्योंकि इन्होंने, इन विकारों ने हमारे जीवन को इतना गिरा दिया है। अब इस स्तर को, जीवन के स्तर को ऊंचा करना है तो इन बुराइयों को तो जीतना ही पड़ेगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, दुश्मनी, हेराफेरी, बेईमानी, न जाने क्या क्या, ये सब ईश्वर को सौंपना पड़ेगा। भगवान इसीलिए शिव जी के लिए क्या दिखाते हैं, सारा उनके ऊपर कौन क्या अर्पण करते हैं। कोई मिठाइयां नहीं अर्पण करते, अक के फूल, धतूरा, ये क्या क्या, बेल पत्र, कड़वी कड़वी चीजें, ये नहीं कोई मीठी मीठी अच्छी अच्छी चीजें। तो परमात्मा हमसे यही चाहता, हमसे कोई और कुछ नहीं चाहता। तो यही सच्चा भक्ति योग, यही सच्चा संन्यास योग योग, और यही समत्व योग है। इट्स अ योग ऑफ बैलेंस। इसमें कोई हट क्रियाएं करने की बात नहीं है, कोई पद्मासन करने की जरूरत नहीं है, पर पद्म जैसा जीवन बनाओ। कोई शीर्षासन करने की जरूरत नहीं है, सिर पर बैलेंस नहीं, पर सिर का बैलेंस, बैलेंस ऑफ माइंड। और ये जब हम राजयोग से सीखते हैं तो ये सारी प्राप्तियां हमारे जीवन में आती है, और यही हम चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। हमारे अंदर परखने की शक्ति हो, निर्णय करने की शक्ति हो, व्यवहार की शुद्धि हो, व्यक्तित्व में निखार हो, मनोबल में वृद्धि हो, शांति की प्राप्ति हो, पाप कर्मों से मुक्ति हो, एकाग्रता की वृद्धि हो, संबंधों में सुधार हो, आनंद की प्राप्ति हो। ये सच्चा आनंद, जिसको हम परमानंद कहते हैं, उस परमात्मा से मिलन का आनंद हम प्राप्त करते हैं। अब उसके लिए हमें यह समझना होगा कि ये हमें अभी करना है। कई कहते हैं अभी तो मैं छोटा हूं, अभी तो जवान हूं, जब बूढ़ा होंगे ना तभी ये बातें सोचूंगा। या बूढ़ा सोचता है अभी तो मैं बूढ़ा हो गया, मैं जवान थोड़ी हूं जो मैं पद्मासन कर सकूं और शीर्षासन कर सकूं, ये आसन कर सकूं, ये तो जवानों का काम है। अब जवान सोचते बूढ़े होंगे तो योग करेंगे, बूढ़े सोचते जवान होते तो करते, अभी क्या करूंगा तो कब करेंगे। कब करेंगे? और कई सोचते हैं ये मेरे धर्म में है ही नहीं, इसलिए मेरे धर्म में नहीं है तो ये सब मेरे लिए नहीं है। लेकिन नहीं, राजयोग जीवन जीने की कला, जीवन तो जी रहे हैं ना, और ये सभी के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो राजयोग का अभ्यास कर सकता है। इसमें केवल अपनी आत्मा की आवाज सुननी है, बस आपकी आत्मा हर वक्त आपको मार्गदर्शन दे रही है, उसको सुनो। और राजयोग वो आवाज स्पष्ट करता है, वो आवाज सुनाई देती है और उस अनुसार हम चलते हैं। तो राजयोग क्या है? योगी अपने आप को पहचाने, मैं कौन हूं। आज हम आपसे पूछेंगे आप कौन हैं, तो शरीर का ही परिचय देंगे, नाम बताएंगे, व्यवसाय बताएंगे, प्रोफेशन बताएंगे या भाषा बताएंगे, मराठियों गुजरातियों या जो भी आपका कार्य है वो बताएंगे, धर्म बताएंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो हो। या विदेश जाएंगे तो हम कहेंगे आई एम इंडियन, तो हम मैं इंडिया का हूँ, भारत में तो नहीं कहेंगे क्योंकि सब है ये इंडियन, पर विदेश में ये हम अपना परिचय देंगे आई एम इंडियन। लेकिन क्या यही मेरा सच्चा परिचय है? यही मेरा सच्चा परिचय होता तो हर समय यही परिचय मैं देता, क्योंकि भगवान के आगे तो मैं दूसरा ही परिचय देता हूँ। दुनिया के आगे, लोगों के आगे मैं सेठ हूँ, साहूकार हूँ, होशियार हूँ, फलाना हूँ, बड़ा अभिमान जताते हैं। कोई अगर मुझे बुरा कह दे बड़ी इंसल्ट महसूस होती है। अपमान क्यों महसूस होता है? क्योंकि अंदर में अभिमान है, जिसको अभिमान होता है उसी को अपमान महसूस होता है। लेकिन भगवान के आगे तो हम खुद ही अपना अपमान करते हैं, मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, मैं दास हूँ, कपटी हूँ, गंदा हूँ, बंदा हूँ, चरणों की धूल हूँ, मिट्टी हूँ, मूर्ख हूँ, निर्बल हूँ, हे भगवान तुम ही शक्ति दो। और मुझे वो वैसे कोई भूल से भी कह दे चल मूर्ख कहीं का, या स्टूपिड मूर्ख कहीं का, वो कहेगा मुझे तो मूर्ख कहते हो, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, मैं मूर्ख तो तू महामूर्ख। ईंट का जवाब पत्थर से, उसने तो ईंट ही फेंकी, हमने पत्थर फेंका, महामूर्ख कह करके, क्योंकि क्यों मुझे मूर्ख कहा। तो भगवान के आगे तो हम खुद ही अपने आप को कह रहे हैं। तो कौन सा है मेरा सही परिचय, या दोनों ही परिचय गलत है? क्योंकि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये भी सही परिचय नहीं है, क्योंकि जिन उपलब्धियों का हम घमंड कर रहे हैं आज है कल नहीं रहेंगे, जरूरी थोड़ी कि हर वक्त रहेंगे ये। और अगर हम अपने आप को नीच पापी कह रहे, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, हीनता की भावना है, और फिर परमात्मा के आगे कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो माता पिता की तो खूब स्तुति गाते हैं, वो तो कितने ऊंचे और उनके बच्चे इतने नीच, तो इनडायरेक्टली इंसल्ट परमात्मा की कर रहे हैं, अपनी केवल नहीं कर रहे हैं। जैसे कोई बच्चा अपने पिता के पास जाए, कहे पिताजी आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो, पर मैं आपका बेटा ना बड़ा बुद्धू, बड़ा मूर्ख हूँ। पिता ही कहेगा बेटा तो मेरी नाक काट रहे हो। क्योंकि बच्चा ऐसा है तो बाप पता नहीं कैसा होगा, बच्चे को देख के बाप की परख होती है ना। तो हर पिता चाहेगा मेरा बेटा मेरे जैसा बने, तो परमात्मा भी क्या चाहेगा, जैसे मूर्ख पापी बने रहे है? तो क्या हूं मैं? इसलिए उसको हमें समझना होगा, कौन है योगी, कौन है साधक। तो जब हम ये समझते हैं तो अब इसकी गहराई में जाना चाहेंगे, मैं कौन हूं। हम कहते हैं मैं मनुष्य हूं, तो मनुष्य किसको कहा जाता है? मनुष्य तो क्यों नहीं है, पर मनुष्य क्या केवल ये हड्डी मांस का ढांचा? आज कोई रोगी अस्पताल जाता है तो फलाने को एडमिट किया, पर कल वो रोगी मर जाता है तो ये थोड़ी कहेंगे फलाने को ले जाओ, फलाने के बॉडी को ले जाओ, बॉडी ही है, फलाना तो चला गया, उसके केवल बॉडी को वो छोड़ के गया। तो मैं कौन हूं? कौन चला गया? ये शरीर केवल एक साधन है, साधन मैं नहीं हूं। ये माइक्रोफोन मेरा साधन है, इस माइक्रोफोन से मैं बोल रही हूं, पर मैं तो माइक्रोफोन नहीं हूं ना। तो मैं कौन हूं? इसको अगर हम समझ जाएं, मानो ये जीवन की पहेली समझ जाएं, तो परमात्मा ने उस पहेली को हल किया है कि इस शरीर के अंदर विराजमान मैं एक चैतन्य शक्ति हूं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल, दैट सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट एनर्जी, वो एनर्जी है। वो सोल चली गई, शरीर तो डेड बॉडी है, उसको अर्थी कहते हैं। हाँ, डेड बॉडी को ले जाते हैं ना शमशान में, तो उसको अर्थी कहते हैं। अ प्लस रथी, माना जिसमें से रथी निकल गया, जो उसका मालिक था रथ चलाने वाला, वो तो है ही नहीं, बाकी केवल वो अर्थी है, डेड बॉडी है। ड्राइवर तो चला गया, खाली गाड़ी है। तो मैं कौन हूं? वो सोर्स ऑफ यूनिक लाइट हूं, एनर्जी हूं, और स्पिरिचुअल एनर्जी हूं। इसलिए ह्यूमन और बीइंग, बीइंग पार्ट हूं। ह्यूमन पार्ट तो फिजिकल पार्ट है, जैसे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, हार्डवेयर अलग चीज है, चाहे हार्डवेयर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना ही मदरबोर्ड उसकी बहुत मेमोरी, बहुत कुछ उसमें है, बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर है, पर सॉफ्टवेयर डाला ही नहीं है। तो वो मदरबोर्ड, वो हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर, सीपीयू, वो तो, या वो मॉनिटर, वो तो बुद्धू बॉक्स है, क्योंकि सॉफ्टवेयर भी तो चाहिए ना। तो इसीलिए मैं कौन हूं? सॉफ्टवेयर हूं या हार्डवेयर हूं, क्या हूं? इसीलिए कहा जाता है, यू आर नॉट व्हाट यू डू और व्हाट यू ईट और व्हाट यू वेयर, बट यू आर व्हाट यू थिंक। द सॉफ्टवेयर हूं मैं, यू आर व्हाट यू फील, व्हाट यू रियलाइज, व्हाट यू एक्सपीरियंस, ये सबकॉन्शियसनेस, वो आप है, मोटी चीज नहीं। तो वो मैं कौन हूं, जिसको हमें समझना है। तो आत्मा और शरीर में कितना अंतर है, ये नहीं कि शरीर का मूल्य नहीं है, शरीर का मूल्य क्यों नहीं है? अब मुझे ड्राइविंग आती है परंतु गाड़ी नहीं है, तो क्या लाइसेंस की पूजा करूंगी? क्या आती है गाड़ी चलानी, लाइसेंस भी मिल गया, गाड़ी भी तो चाहिए। एक्टर बहुत अच्छा पर मंच नहीं है, तो फायदा क्या? एक्टिंग आती है लेकिन मंच भी तो चाहिए। तो शरीर का अपना स्थान है, आत्मा का अपना स्थान है, पर आत्मा शरीर में आकर ये थोड़ी भूल जाएगी कि मैं शरीर से अलग चीज हूं। ड्राइवर ये थोड़ी भूल जाएगा कि मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, मैं कंट्रोलर हूं, क्योंकि अगर वो भूल जाए तो गाड़ी उसको कंट्रोल करने लगेगी। इसलिए कहा जाता है ड्रिंक एंड ड्राइव डोंट मिक्स। आप माउंट आबू आए होंगे, वहां लिखा है ड्रिंक ड्राइव डोंट मिक्स, शराब पी करके गाड़ी मत चलाए, क्योंकि आप भूल जाएंगे अपने आप को। तो इसीलिए आज इंसान अपने आप को भूल गया है, इसीलिए जीवन में कितने एक्सीडेंट्स करता है। तो राजयोग के माध्यम से हम खुद को पहचानने लगते हैं कि मैं कौन हूं। तो आत्मा वो ड्राइवर है, धीरा है, दीपक है, मूर्ति है, रथी है, अभिनेता है। अभिनेता, अभिनय अलग चीज है। अभिनेता वो ड्रेस पहनता है, लेकिन अभिनेता ड्रेस पहन करके अभिनय करते हुए अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी को नहीं भूलता, कैसे भूलेगा? अमिताभ बच्चन अपना अनुभव एक बार सुना रहे थे कहीं, दिन में पांच शूटिंग करता था, पांच शूटिंग। सवेरे कूली की शूटिंग की, तो शाम को शहनशाह की शूटिंग की, दिन में कोई और शूटिंग की, लेकिन क्या, न वो कूली है, न राजा है, न डॉक्टर है, न वकील है, वो तो एक एक्टर है। तो इसी प्रकार मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा हूं। अब ये कैसे याद रहे? मैं आत्मा आध्यात्मिक हूं, शरीर भौतिक है, ये अंतर को समझना होगा। मैं बोल रही हूं, देख रही हूं, सुन रही हूं, जो भी कर्म कर रही हूं, शरीर नहीं कर रहा है, आत्मा उसके द्वारा कर रही है। ये आत्मिक स्थिति हमको अनुभव करनी है। ये इंद्रियां क्यों आज मालिक बन गई है? क्योंकि हम शरीर से अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसलिए इंद्रियां मालिक हो गई। पर अगर मैं मालिक आत्मा हूं तो मैं आत्मा इन आंखों से देख रहा हूं, नहीं देखना ना देखो, मालिक हूं मैं आत्मा इन हाथों से कर्म कर, नहीं करना है नहीं करो, मालिक हूं। लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा काम कर लिया, किसको थप्पड़ मार ली और फिर कहेंगे ओ मैंने पता नहीं क्यों थप्पड़ मारी, मुख से कुछ बोल दिया, मुझे नहीं बोलना चाहिए था पर बोल दिया, फिर सॉरी, हाँ मैंने ये बोला आपको सॉरी, पर पहले क्यों नहीं सोचा? तो होंठ आपके मालिक हो गए, आप आत्मा मालिक नहीं हुई ना। तो मैं आत्मा मालिक हूं जो आध्यात्मिक हूं, अविनाशी हूं, अनादि हूं। ये शरीर से पहले भी थी, ये शरीर तो बाद में मिला है और इस शरीर के बाद भी रहूंगी, ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। ये पंच तत्व से आए हैं, वापस उनको ही मिलने हैं, और मैं तो परमात्मा से आई हूं। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, शरीर का नहीं। भले प्रकृति भी ईश्वर की रचना है, लेकिन याद कौन कर रहा है परमात्मा को? आत्मा कर रही है। इसलिए जब हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और ये मानने लगते हैं हम, तो फिर हमारी भाषा बदल जानी चाहिए। अभी हम क्या भाषा बोलते हैं, मेरे अंदर एक आत्मा है, मेरे अंदर एक आत्मा है। क्या ये वाक्य सही है, मेरे अंदर एक आत्मा है? सही है, मेरे अंदर आत्मा है, माना मैं शरीर हूं और मेरे अंदर एक आत्मा है। दूसरा वाक्य है कि मेरे शरीर में मेरी आत्मा है। क्या ये वाक्य भी सही है, मेरे शरीर में मेरी आत्मा है? तो मैं क्या कोई तीसरी चीज हूं? क्योंकि दोनों ही मेरे हो गए, तो मैं कौन? तीसरा वाक्य है, मेरे शरीर में मैं एक आत्मा हूं। तो सही वाक्य किसको कहेंगे? हाँ, सिंपल, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा है, क्यों नहीं मेरा है? ये मुझे अपने कर्मों अनुसार प्राप्त हुआ है तो मेरा तो है, पर मैं नहीं हूं। अब ये जब हमने समझा तो मैं मालिक बन करके कार्य करूंगी। अब मैं मालिक कहां हूं, कैसे हूं, ये भी फिर समझना है। मालिक से मुझे मिलना है, पर वो कहां बैठा है और क्या कर रहा है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो आत्मा तक, मुझ आत्मा तक खुद को ही पहुंचना है तो आत्मा के बारे में संपूर्ण ज्ञान चाहिए, केवल इतना ही नहीं कि हां आत्मा हूं। तो क्या है आत्मा? आत्मा तीन शक्तियों का पुंज है, मन, बुद्धि, संस्कार, माइंड, इंटेलिजेंस, संस्कार। ये MIS है, मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं व्हाट इज MIS। तो ये आत्मा की मैनेजमेंट कैसे होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन का काम सोचना है, थॉट एनर्जी। व्हाट इज माइंड? माइंड इज नॉट फिजिकल, माइंड इज स्पिरिचुअल, इज थॉट एनर्जी। मन की स्पीड आप कभी माप नहीं सकते हैं, फिजिकल चीजों की आप स्पीड माप सकते हैं, फिजिकल एनर्जी की भी स्पीड आप माप सकते हैं। लाइट एनर्जी ट्रेवल्स द फास्टेस्ट, और उसके लिए कहते हैं कि लाइट की किरण सूरज से निकल तक धरती तक पहुंचने में 8 मिनट लगते हैं। उसके आधार से सूरज कितना दूर है वो पता करते हैं। इसने कोई पहुंचा तो नहीं है सूरज तक, पर पता है कितना दूर है सूरज धरती से, लाइट एनर्जी की स्पीड के अनुसार मेजर किया है। पर मन की स्पीड कितनी है वो मेजर कर सकते हैं? फिजिकल एनर्जी को भी हम इक्वेशन दे रहे हैं। आइंस्टाइन ने एनर्जी के लिए इक्वेशन दिया, E=mc² मास इनटू स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ लाइट। एनर्जी एक एटम के एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन रिलीज से इतनी एनर्जी पैदा हो सकती है। एनर्जी कैन बी इन्फिनिट, परंतु वो मास में फिर भी फाइनाइट है, एनर्जी कैन स्टिल बी लिमिटेड, पर मन की स्पीड आप मेजर कर सको तो हो सकता है सूरज तक मन से पहुंचने में कितनी देर लगेगी, हा? एक सेकेंड भी नहीं, पहुंच सोचा और सूरज तक पहुंच गए, पास्ट में चले जाओ, फ्यूचर में चले जाओ, कितनी, एक सेकेंड भी नहीं। तो मन क्या है? इट्स थॉट एनर्जी, दीज आर थॉट वेव्स। इसलिए मैंने सोचा एक सेकेंड में मेरी सोच किस तक पहुंच गई, टेलीपैथी, इट्स नॉट फिजिकल एनर्जी वर्किंग। अब मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, तो मन के ऊपर दूसरी शक्ति है बुद्धि। इसीलिए कहा जाता है सोच समझ कर कर्म करो, तो बुद्धि समझती है, फिर आत्मा उसे कर्म करती है, फिर जो कर्म करती है वो सबकॉन्शियसनेस में आ जाता है, जिसको हम संस्कार कहते हैं। जैसे मैं बोल रही हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो वीडियो सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये रिकॉर्ड होकर अगर फिर रिवाइंड करेंगे वही सुनाई देगा। तो आत्मा जो कर्म करती है उसका निष्फल नहीं जाता, वो आत्मा में रिकॉर्ड हो जाता है, और फिर उसी अनुसार फिर मन सोचेगा। दिस इज लाइक अ साइकिल, लेकिन आज ये विशेष साइकिल बन गया है। क्यों विशेष साइकिल बन गया है? क्योंकि देह अभिमान के वशीभूत मन सोच रहा, इंद्रियों के वश होकर के, और बुद्धि कमजोर हो गई है, बुद्धि को मन दबा रहा है इंद्रियों के आवेग में आकर, तो कर्म भी ऐसे ही हो रहे। आत्मा के लिए कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, देवात्मा, क्योंकि जैसे जैसे उसके संस्कार बनते जाते उस अनुसार वो पाप या पुण्य या धर्म ये जो कुछ करती वो उस वैसी आत्मा कहलाएगी। अब इस विशेष साइकिल को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो पहले बुद्धि को इनिशिएट करो। इसीलिए कहते इंग्लिश में लुक बिफोर यू लीप, थिंक बिफोर यू थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक। सोचने से भी पहले सोचो आप क्या सोचेंगे, और अगर बुद्धि कहते ये सोचना नहीं है स्टॉप इमीडिएटली, डोंट कैरी ऑन। इसीलिए मन को हमें समझना है, बुद्धि को समझना है, फिर संस्कारों को समझना है। तो कई लोग कहते हैं मन तो चंचल है ना, इसलिए हम मेडिटेशन जो करते हैं ना मन को ब्लैंक बना देते हैं, नो थॉट्स। हम कहते हैं मन को थॉटलेस बनाना ये लक्ष्य नहीं है, क्योंकि मन एक बहुत बड़ी शक्ति है। ये तो जैसे किसी शक्तिशाली व्यक्ति को हमने बांध के बिठा के रखा है, इट्स लाइक अ जायंट, और आपने उसको उसमें इतनी एनर्जी है और आप उसने उसको बांध दिया, तो बेचारा क्या करेगा। एक चंचल बच्चा है, बहुत चंचल है, लेकिन बहुत एनर्जेटिक है, बहुत इंटेलिजेंट भी है, और उस चंचल बच्चे को आप बांध के बिठा दो, बेचारा उसका क्रिएटिविटी भी उसकी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको मारते रहते, बांधते रहते, गुस्साई कर देते, डांटते रहते, बेचारा क्या करेगा। परंतु चंचल बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अगर छोड़ देंगे तो क्या करेगा, नाक में दम कर देगा माँ के, पीछे पीछे माँ भागती रहेगी, तोड़ फोड़ करता रहेगा बच्चा, नहीं तो छोड़ भी नहीं सकती है और बांध के भी नहीं बिठा सकती है, तो कैसे बच्चे को वश में करते हैं, कैसे करते हैं? उनका ध्यान कहीं और देंगे, देखो देखो वो कितना सुंदर पक्षी, देखो देखो हम बच्चा खाता नहीं है तो इस तो ध्यान दूसरी ओर करेंगे, या उसको बिजी रखना है तो कोई इसका काम दे दो, कोई ऐसा क्रिएटिव काम दे दो, बिजी हो जाएगा, क्योंकि उसको काम अच्छा लगता है। तो मन को भी काम चाहिए, नहीं तो खाली मन शैतान का घर बन जाएगा। तो मन एक बहुत बड़ी शक्ति है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की एक बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है HRD, तो वो HRD में एजुकेशन भी आ जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। हर कंपनी में ये ह्यूमन रिसोर्स की का ब्रांच है या उसका डिपार्टमेंट है, ये मन की शक्ति से संबंधित है। तब इस मन की शक्ति को हमें उसकी एनर्जी को सदुपयोग करना है, जैसे प्रकृति की एनर्जी का हम सदुपयोग कर रहे हैं, है ना। आज बिजली कैसे बनती है, पानी, हवा, ये सूर्य की अग्नि, उनसे हम बिजली तैयार करते हैं। तो मन की एनर्जी को भी हम उनको सही दिशा देकर हम बहुत आत्मा शक्तिशाली बन सकते हैं। लेकिन आज मन की शक्ति व्यर्थ जा रही है, इसीलिए राजयोग के द्वारा हम उस शक्ति को सही दिशा देते हैं तो जीवन का संचालन भी सही होता है। तो मन क्या है? मन हमारे समझ सोचने की शक्ति है। तो सोच को नहीं रोकना है, बुद्धि उसको दिशा दे। तो बुद्धि क्या है? एक फिल्टर की तरह है, क्योंकि मन में तो बहुत सोच चलेंगे, कई प्रकार के सोच चलेंगे, पर बुद्धि निर्णय करती है कि किस सोच को आगे कर्म में लाना है। जैसे चाय छानते हैं तो चाय छन्नी पत्ती को ऊपर रखेगी और चाय जो पीने की चीज है वो ग्लास में आ जाएगी, नहीं तो पत्ती मुंह में आती रहेगी, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए छन्नी से हम उसको छान देते हैं। तो बुद्धि फिल्टर करती है कि क्या सोचना है क्या नहीं सोचना, क्योंकि सारी सोच को तो आप कर्म में ला भी नहीं सकते हो। किसी ने कहा है कि एक मिनट में कम से कम 25-30 विचार तो आते ही है, 30 thoughts in 1 minute, यानी हर 2 seconds में एक थॉट तो आता ही है। नॉर्मल माइंड में भी आप बहुत स्ट्रेसफुल नहीं है, नॉर्मल है तो भी 30 thoughts तो आएंगे एक मिनट में, और स्ट्रेस में आ गए बिकम्स लाइक यू नो लाइक ऑपोजिट, 2 thoughts in 1 second, और भी ज्यादा अगर सेम रिपीटेड थॉट, क्यों 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 क्यों, हैमरिंग, जैसे हैमरिंग कर रहे हैं। तो अब उसको हमें बदलना होगा, जो नहीं सोचना है एक सेकंड में फुल स्टॉप, जो सोचना है उसको आगे बढ़ाओ, नहीं तो समय, श्वास, संकल्प शक्ति सब व्यर्थ जाता है। तो बुद्धि वो फिल्टर का काम करे, वो निर्णय तुरंत दे कि कौन से सोच को आगे बढ़ाना है, कौन से सोच को खत्म करना है। और फिर बुद्धि की तुलना एक तराजू से भी की जाती है, इसलिए न्याय की देवी के हाथ में तराजू देते हैं और आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, अर्थात पक्षपात रहित, नो किसी भी प्रकार की पार्शियलिटी नहीं। तो तराजू में क्या होता है? 3 चीजें हैं, एक कांटा है वो एकाग्र चाहिए, दूसरी डंडी है जो सीधी चाहिए, और तीसरे पलड़े हैं जो समान चाहिए। तो राजयोग हमें सिखाता है मन का कांटा एकाग्र करो, एक परमात्मा की तरफ करो, फिर डंडी सीधी माना, नो बायस अगेंस्ट एनीबॉडी, मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सब में समान स्थित प्रज्ञ अवस्था, क्योंकि अपमान मुझे हुआ ही नहीं, मैं आत्मा अपने स्वमान में हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, एक शक्ति हूं, परमात्मा की संतान हूं, तो अपमान महसूस नहीं होगा, स्व के आत्म स्वाभिमान में रहूंगे। और फिर पलड़े समान माना, पलड़े केवल वजन बताएंगे, एक साइड तो वजन ही है, वजन ही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे, हीरे का दाम क्या है वो नहीं, वजन कितना है बस। तो वजन देना माना मूल्यों को वजन देना, परमात्मा की याद में अनबायस्ड स्थिति और मूल्यों को वजन दो, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, एट द कॉस्ट ऑफ माई पीस आई वोंट गो फॉर मनी, मनी इज नथिंग कंपेयर टू माई पीस। इसीलिए कहा जाता है धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया कुछ गया, पर चरित्र गया तो सब कुछ गया। तो चरित्र के कॉस्ट पर हम धन के पीछे नहीं जाएंगे, वो तो कुछ नहीं गया, अगर गया तो चरित्र को हम क्यों बेचें, वो तो आत्मा के साथ जाएगा, धन तो हाथों की मैल है, वो तो चढ़ेगा उतरेगा, पर चरित्र तो आत्मा के साथ जाएगा। तो उसको महत्व दे या धन को महत्व दे, लेकिन आज मनुष्य धन को महत्व दे रहा है चरित्र की कीमत पर, उसको बेचकर। इसीलिए ये जीवन हमारा कौड़ी तुल्य बनता जा रहा है। तो बुद्धि को कैसे परमात्मा में लगाएं, मन को उसमें दिशा दें, ये राजयोग सिखाता है। तो फिर तीसरी चीज है संस्कार, ये कर्मों का प्रभाव है। आत्मा जो कुछ करती है वो संस्कार बनते जा रहे हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है, आई हैव टू बी वेरी अटेंटिव, क्योंकि वो आ जाएगा जो भी आपने किया। अगर अटेंटिव नहीं रहे तो थोड़ा हट्टी हट्टी बुद्धि वो भी आ जाएगा। इसलिए हर कर्म बहुत सोच समझ कर करो। तो ये आत्मा के संस्कार बन रहे हैं, हमारा स्वभाव, हमारी आदतें, हमारा व्यक्तित्व, हमारी कौशल, हमारी स्मृति, जो अवचेतना सबकॉन्शियसनेस, वो सब समाती जा रही है। और यही मेरा जीवन का सच्चा साथी बनना है, बाकी कुछ भी नहीं बनना है। तो मैं कौन हूं, आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण भी हमारे पास है। कई लोग कहते हैं हम कैसे माने आत्मा है, हम नहीं मानते आत्मा वात्मा कुछ नहीं, सब शरीर ही सब कुछ है। अब हम कई प्रमाण देते हैं, कई छोटे छोटे बच्चे इतना अच्छा गाते हैं, इतनी अच्छी डांस करते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं। 3 साल का बच्चा कंप्यूटर चला रहा है, दोस्त मतलब इतने इंटेलिजेंट, माँ बाप को तो कुछ भी पता नहीं है, न माँ बाप ने कुछ सिखाया, तो बच्चे कहाँ से सीख लेते हैं, इससे सिखाया भी नहीं। ये पूर्व जन्म से आत्मा वो संस्कार लेकर के आई है। तो जब ऐसे बच्चों को देखते हैं तो लगता है कि ये केवल इस जन्म के संस्कार थोड़ी है, माँ बाप के तो संस्कार है ही नहीं, माँ बाप को तो कुछ भी नहीं मालूम, और वो बच्चे इतने इंटेलिजेंट, इतने वो अच्छी कला उनके अंदर, ये पूर्व जन्म से आत्मा वो कला के संस्कार लेकर के आई है। फिर दूसरी बात हम देखते हैं कि किस प्रकार आजकल इसके बहुत प्रयोग होते भी हैं और कई अनुभव करते हैं, जिसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहते हैं या नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। व्यक्ति मृत घोषित हो गया, हार्ट बीट बंद, सब आंखें पथरा गई, डेड कंप्लीटली। अब डॉक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद वो फिर जाग जाता है, और जागने के बाद वो बताता है मैं ऊपर से देख रहा था आपको, अपनी डेड बॉडी को भी देख रहा था, आप क्या बात कर रहे थे वो भी मैं देख रहा था, मेरी पत्नी बाहर बैठी है मैं उसको भी देख रहा हूं, डॉक्टरों को भी देख रहा हूं, डेड बॉडी को भी देख रहा हूं, सुन भी रहा हूं। अब कौन देख रहा है, आंखें तो पथरा गई थी, कान तो सब पथरा गए थे, कैसे सुन रहे हैं, कुछ भी नहीं, बॉडी तो डेड है, तो किसने सुना, किसने देखा। फिर गुस्सा भी आ रहा है कि अरे मैं सुन रहा हूं आपको, तो गुस्सा किसको आ रहा है, बॉडी तो डेड है। ये आत्मा की शक्ति है। और कई अपना अनुभव सुनाते, मैं तो जैसे दूर दूर चला गया एक घने टनल के अंदर, फिर उसके बाद एक लास्ट में एक प्रकाश दिखा, प्रकाश ने मुझे कहा वापस जाओ, अभी आपका समय नहीं हुआ है, और मैं वापस आ गया, ऐसा अनुभव हुआ। ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सिद्ध करता है कि अनुभव शरीर को नहीं होता है, आत्मा को होता है। और तीसरी चीज है सम्मोहन द्वारा भूत या भविष्य में जाना। आजकल मेडिकल साइंस इसको यूज कर रही है। एक व्यक्ति था, प्रैक्टिकल मेरा अनुभव उस व्यक्ति का, वो बता रहा था कि उसको यहां बहुत दर्द होता था पेट में, बचपन जन्म से यानी रोता ही रहता था, बड़ा हुआ भी तो भी दर्द ही दर्द, दर्द ही दर्द, बहुत सोनोग्राफी कराई, डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दर्द मिटे नहीं, कुछ भी नहीं था, नो प्रॉब्लम है ही नहीं, क्यों हो रहा है दर्द समझ में नहीं आता है। तो किसने उनको कहा कि गोइंग टू पास्ट बर्थ्स, वो सम्मोहन द्वारा पास्ट बर्थ्स में ले जाएं, तो वहां पता चलेगा कुछ पास्ट बर्थ का कुछ इफेक्ट है। तो उसने करवाया, तो जैसे करवाया तो पता चला कि वो पूर्व जन्म में एक सिपाही था, सैनिक था, और युद्ध के मैदान में जब वो युद्ध में था तो दुश्मन की गोली लगी और यहां ही लगी, इतनी गोली जबरदस्त अंदर गई और वहां जैसे पेट को फाड़ दिया और फिर रिसाव होता गया होता गया होता गया, कोई बचाने वाला नहीं था, उसी पेन में उसकी डेथ हुई। अब वो आत्मा उस पेन का संस्कार लेकर के गई और अगला जन्म तो अच्छा मिला, नॉर्मल बॉडी मिला, लेकिन वो पेन का जो संस्कार था ना वो इतना सब कॉन्शियसनेस में आ गया जो वो दर्द को भूल ही नहीं सका। फिर जब वो उसको उसका सम्मोहन करके उसको उससे डिलीट कर दिया, फिर कोई दवाई की तो जरूरत ही नहीं है ये तो, इसीलिए साइकेट्रिक साइकोलॉजी में इसका बहुत यूज होता है सम्मोहन। कई फ्यूचर बर्थ्स को समझ लेते हैं, फ्यूचर भविष्य में क्या होने वाला, इंट्यूशन आते हैं। कहां से इंट्यूशन आते हैं, ब्रेन में तो वो फेड है ही नहीं, भविष्य तो अभी तक उसने फेड कहां हुआ है, तो भी दिखाई उनको अनुभव होने लगता है। कैसे देखते, कौन देखता है भविष्य को, ये आत्मा की शक्ति है। अब इसको हम समझ सकते हैं कि आत्मा क्या चीज है। अब फिर कई कहते हैं अच्छा आत्मा कहाँ है शरीर में, उसके लिए बहुत मते हैं। कोई कही कहेगा आत्मा हर बॉडी के हर सेल में है, कोई कहेगा हृदय में है, कोई कहेगा नाभि में है, पता नहीं क्या क्या कई विचार देते हैं। वास्तव में आत्मा का स्थान वही है जहां से पूरे शरीर का नियंत्रण होता है। जैसे कंपनीज में हम देखते हैं फैक्ट्रीज में कंट्रोल रूम होते हैं, कंट्रोल रूम में ही सब कुछ चलता है, कुछ नहीं करना पड़ता, जाना नहीं पड़ता, बस कंट्रोल रूम में सब बटन ही दबाने पड़ते हैं बस, और सब अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो आत्मा वही होगी जहां शरीर का कंट्रोल रूम है। तो कंट्रोल रूम कहाँ है, ये मस्तिष्क। हाथ कट गया पैर कट गया तो भी इंसान जिंदा रह सकता है, पर शरीर कट जाए तो आत्मा कहाँ रहती है इस शरीर में, इसको आज्ञा चक्र कहते हैं। स्त्रियां यहाँ तिलक लगाती है और तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं। तीसरा नेत्र ये किसकी निशानी है, ये आत्मा की निशानी है, ज्ञान का नेत्र। कोई नेत्र निकल नहीं आता है, पर ये ज्ञान जैसे आत्मा को प्राप्त हुआ, उसको तीसरा नेत्र मिल गया तीनों कालों को समझने का। इन आंखों से तो केवल वर्तमान ही देख सकते हैं, लेकिन इस तीसरे नेत्र से हम तीनों काल देख सकते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या इसका क्या परिणाम हो सकता है, ये ज्ञान का नेत्र देख रहा है। तो जैसे हम अपने आप को आत्मा निश्चय करते हैं तो बुद्धि में ये समझते हैं मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ एक सितारा हूं। कई कहते हैं अगर आत्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देती है, हम कहते दिखाई कैसे देगी, ये आंखें तो आपके प्रकृति की आंखें हैं, तो प्रकृति की आंख तो प्रकृति की चीज कोई देखेगी ना, आत्मा प्राकृतिक है ही नहीं। वैसे भी प्रकृति में भी दूर की चीजें ऐसे नहीं नेकेड आई से देख सकते हैं, आपको दूरबीन चाहिए, टेलीस्कोप चाहिए, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीवाणु भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप चाहिए, साधन चाहिए। तो प्रकृति की चीजों को भी देखने के लिए आपको साधन चाहिए, आत्मा को कैसे देख सकेंगे, आत्मा को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। आत्मा सोल इज नॉट फिजिकल, इट इज मेटाफिजिकल, ये प्रकृति से ऊपर की शक्ति है, प्रकृति अपने आप के लिए नहीं है। ये गीत है ना, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। वृक्ष अपना फल नहीं खाता, नदी अपना जल नहीं पीती, ये शरीर भी अपने लिए नहीं है, ये मालिक के लिए है, और मालिक है आत्मा। आत्मा है तो शरीर काम करेगा, मालिक निकल गया शरीर काम मकान ये नौकर किस लिए काम करेंगे, मालिक ही नहीं है। और कई बार उल्टा होता है, मकान या गाड़ी पंचर हो गई, अब गाड़ी पंचर हो गई तो ड्राइवर चलाएगा कैसे, तो उसको उतरना पड़ता है, भाई देखे तो सही क्या हुआ, गाड़ी पंचर कैसे हो गई, तो जबरदस्ती भी उतरना पड़ता है। अब एक्सीडेंट हो गया एकदम, ब्रेन को चोट आ गई, ब्रेन डैमेज हो गया, तो आत्मा को जबरदस्ती निकलना पड़ेगा क्योंकि काम नहीं कर सकते उससे, है ना। पर करने वाली शक्ति कौन है, अनुभव करने वाली शक्ति कौन है, वो मैं आत्मा हूं। तो आत्मा क्या चीज है, एक ज्योति है, प्रकाश का पुंज है, एक चमकता हुआ सितारा है जिसमें मन बुद्धि संस्कार ये तीन शक्तियां समाई हुई है। और जो हम गुणों की बात करते हैं वो सब आत्मा के अंदर ही गुण है। इसलिए कई कहते हैं ना, बाहर से जो आता है ना वो इंफॉर्मेशन आता है, सूचना बाहर से है, मीडिया इज ऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब आईटी, व्हाट इज इट, इंफॉर्मेशन। सो व्हाट यू टेक फ्रॉम आउटसाइड इज इंफॉर्मेशन, बट व्हाट कम्स फ्रॉम इनसाइड दैट इज नॉलेज। ज्ञान अंदर से आता है, सूचना बाहर से आती, इंफॉर्मेशन बाहर से आता है। भोजन बाहर से खाते पर वो हजम हो जाए, वो शक्ति बन जाए, फिर उस शक्ति को यूज करो, वो अंदर से आती है। भोजन शक्ति नहीं है, वो तो स्थूल चीज है। तो वो शक्ति जो आत्मा की शक्ति बन जाती है वो ज्ञान, वो अंतर आत्मा का है। इसलिए ज्ञान भी अंदर ही मिलेगा आपको। आत्मा जानती है अच्छा क्या है बुरा क्या है, अंतर आत्मा को पता है। इसलिए जब भी कोई गलत काम करने जाएंगे, कहते मन खाता है, मन खाता है माना आत्मा जानती है। जैसे हम सफेद वस्त्र पहनते हैं, जरा सा दाग लग जाए कितना बुरा लगता है, दाग लग गया छिपाएंगे, भाई ये दाग दिखाई ना दे, क्योंकि बाकी वस्त्र सफेद है और लोग वही पॉइंटर करेंगे, देखो यहाँ दाग है बहन जी, यहाँ दाग है, ऐसे कहेंगे। हम कहेंगे भी इसको क्यों देखते हो, बाकी सफेद देखो ना, नहीं वो दाग ही दिखाई देगा, क्योंकि क्यों इतने सफेद में ये दाग भी क्यों दिखना चाहिए। तो थोड़ा सा गलत सोच भी लिया ना, तुरंत मन खाएगा, क्योंकि आत्मा अपने मूल स्वभाव में बहुत पवित्र है, बहुत शुद्ध है। तो पवित्रता भी अंतर की चीज है, ये बाहर की शुद्धि भी अंतर की पवित्रता से हम अनुभव कर सकेंगे, ला सकेंगे। अगर अंतर की शुद्धि नहीं है तो बाहर भी शुद्धि नहीं रखते हैं, इसलिए अंतर की शुद्धि बहुत जरूरी है। और जहां ज्ञान है मैं कौन हूं और वो पवित्रता की अनुभूति है चिंतन के आधार पर, तो आत्मा को शांति का अनुभव होता है। शांति माना जब पवित्र विचार मन में चलते हैं वही शांति है। अगर मन में पवित्र विचार नहीं चलेंगे शांति कहां से मिलेगी, किचड़ा होगा तो वहां कीटाणु आएंगे, जीव जंतु आएंगे, मच्छर मक्खियां आएंगे, सफाई कहां है। तो हम जीव जंतु क्यों आ गए, हम ये थोड़े हम उनको दोष देंगे, सफाई रखो। तो शांति क्यों नहीं मिली, इतनी अशांति क्यों है, क्योंकि मन की शुद्धि नहीं है। तो राजयोग से ये मन की शुद्धि आती है, क्योंकि चिंतन से ही शुद्धि आएगी। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं। प्रेम भी आत्मा का निजी गुण है, प्रेम मांगा नहीं जाता है। प्रेम मांगना ये विकार मांगना है, प्रेम तो दिया जाता है क्योंकि वो आत्मा में ही निहित है। इसीलिए बहुत सुंदर कबीर ने कहा, पोथी पढ़त पढ़त पंडित भया न कोई, ढाई आखर अक्षर प्रेम का पढ़ ले वो पंडित हो। तो ढाई अक्षर प्रेम कोई ऐसे लिखने की बात नहीं है, ये अक्षर प्रेम का पढ़ लिया तो पंडित हो गए, नहीं। आत्मा का अनुभव हो और प्रेम आत्मा से निकलता है, आत्मा के प्रति। अगर शरीर का प्रेम विकार बन जाता है, वो या तो काम विकार बन जाएगा या तो मोह विकार बन जाएगा, राग बन जाएगा, ये विकार है, विकृति है। आत्मा का आत्मा से प्रेम ये सत्य प्रेम है, तो वो सबके लिए है। सब आत्माएं, सब एक परमात्मा की संतान है। और जब प्रेम आता है उसके बाद ही सुख की अनुभूति होती है। इंद्रियों का सुख अल्पकाल का सुख है, पर आत्मिक सुख ये ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम से अनुभव होता है। और जहां यह आत्मिक सुख है वही आनंद है। आज इंसान आनंद शब्द को कितना हल्का ले चुका है, कोई चटपटी चीज खा ली, वाह वाह आनंद आ गया, हाँ ऐसे कह देते, वाह वाह क्या मजा आ गया, आनंद आ गया। आनंद क्या आया? वो चटपटी चीज तो जीभ तक ही आनंद मिला, वो टेस्ट बड्स आपके बड़े एक्टिव हो गए, खट्टा तीखा बहुत जो कुछ खाया। अंदर जा करके वो क्या नुकसान करेगा ये उस समय तो पता नहीं चलता है। तो आनंद कितनी देर चला? एक सेकेंड ना, वो टेस्ट बड जब तक एक्टिव था बस। आनंद अंदर तो स्वाद है ही नहीं, इसलिए आनंद उसको नहीं कहेंगे। आप देखेंगे जितने भी साधु महात्मा सन्यासी लोग हैं, उनको जी उनके जो नाम होते हैं ना, उनके नामों के पीछे आनंद होता है। सच्चिदानंद स्वामी, धर्मानंद स्वामी, प्रेमानंद, सत्यानंद, शिवानंद, धर्मानंद, देवानंद, देवताओं का भी आनंद है, वो देवानंद नहीं, देवताओं का भी आनंद है। लेकिन सबसे ऊंचा आनंद कौन सा है? परमानंद, परमात्मा के मिलन का आनंद। और वो अगर रस चख लिया तो बाकी रस सब फीके लगते हैं, बहुत फीके लगते हैं, क्योंकि उस रस का आनंद आत्मा को मिल गया। और यही राजयोग दिलाता है। और जिसे कोई हम शक्ति कहते हैं, विल पावर, आत्मा की शक्ति, और विल पावर जहां काम करती है, फिजिकल शक्ति भी न हो ना तो भी विल पावर से मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है। और शरीर की चाहे कितनी भी शक्ति पर विल पावर नहीं है ना, वो वहीं कमजोर पड़ जाएगा। तो इसीलिए राजयोग में ये सात मूल गुण अनुभव होते हैं, जैसे सात सुर होते हैं। सारा म्यूजिक वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन सेवन, सात जो सुर है उन पर। तो ये सात मूल गुण है, कोर वैल्यूज है। जो कोर वैल्यूज को हम अपने अंदर में पहचाने तो आत्मा अपने आप को इतना शक्तिशाली महसूस करेगी, क्योंकि ये सारे गुण शक्ति के रूप में भी है। और जैसे इनका हम चिंतन करते हैं और एक साथ इनका अनुभव कर सकते हैं राजयोग में, इट्स अ ब्यूटिफुल फीलिंग। और उस फीलिंग में अगर हम आ गए तो सचमुच ओम शांति का मंत्र पक्का हो जाएगा। आप सबसे तीन बार ओम शांति कहलवाया। ओम शांति का अर्थ क्या है? अ उम, तीन अक्षरों से बनता है ओम। तो वह हूं मैं, वह हूं मैं, कौन? आत्मा। फिर शांति, मैं वही हूं जिसका स्वभाव शांति है। शांति पाने के लिए आपको जंगलों में जाने की जरूरत नहीं है, आपका स्वभाव ही शांति है। शांति आपसे कितनी दूर है? केवल एक सोच की दूरी पर है बस। और वो सोच है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अगर आपने ये सोच लिया तो दुनिया की कोई शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकती है। नो बडी कैन गिव यू सोरो, नो बडी कैन मेक यू पीसलेस। और ये अगर नहीं जानते कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं तो दुनिया की कोई शक्ति आपको शांति नहीं दे सकती। इसलिए कहते इज ऑल इन योर माइंड, इट्स ऑल इन योर माइंड। तो मन में हमें बुद्धि के द्वारा सोच लानी है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति मेरा स्वधर्म है। केवल ओम ओम कहने से नहीं होगा, पर ओम मैं आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा हूं, ये निश्चय करो। अब ये तो आत्मा का टेम्पररी घर है, क्योंकि शरीर टेम्पररी है। ये तो वस्त्र पहना इस संसार रंगमंच पर पाठ बजाने लिए, पर आत्मा कहां से आई है? कई लोग दुखी होकर के भगवान को पुकार कर कहते हे भगवान मुझे इस दुनिया से मुक्त करो, मुझे नहीं रहना इस संसार में, मुझे मुक्त करो, मुझे अपने पास बुला लो। अब राजयोग हमें कहता है कि ऐसे भी भगवान को कहने की जरूरत नहीं है दुखी होकर के। क्यों? क्योंकि आत्मा होम सिक हो जाती है, इसीलिए भगवान को ऐसे कहती, जब कोई व्यक्ति अपने घर से बहुत समय दूर रहता है ना, मान लो किसी काम से दूर जाना पड़ा तो घर बहुत याद आता है उसको, कब घर पहुंचूंगा, कब घर पहुंचूंगा। तो आत्मा को भी अपना घर याद आता है, क्योंकि आत्मा का जो घर है वो ये संसार नहीं है। ये दुनिया तो एक मुसाफिर खाना है, हम दो दिन के मेहमान हैं, ईश्वर के घर से आए, ईश्वर के पास जाना है। अब ये इतनी ऊंची ये धारणा अगर हमारी हो जाए तो हम बहुत सहज उपराम भी हो सकते हैं। परंतु घर का भी तो पता हो, घर का ही पता नहीं तो कहाँ जाना है यही पता नहीं, मंजिल ठिकाना हमारा है कौन सा पता ही नहीं, तो मन भटकेगा। इसीलिए कहते क्या करें, मन तो भटकता है क्योंकि ठिकाने का पता ही नहीं है। तो आत्मा कहाँ से आई है, पांच तत्वों से पार, एक छठा महतत्व है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इनसे भी पार, सूर्य, चांद, सितारों के प्रकाश से भी पार एक तत्व है, वो स्वयं प्रकाशित महतत्व है जिसको हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। वो निराकारी लोक है, वो आत्माओं का लोक है, आत्मा का असली निवास स्थान वही है जहां से इस मंच पर आई, और वो शांति का धाम है। तो एक सेकंड में हम मन बुद्धि से उस धाम में पहुंच सकते हैं, और ऐसे महसूस करते हैं अखंड ज्योति के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान हूं, आत्मा हूं। जैसे आकाश में सितारे हम देखते ना, तो आत्मा भी सितारा है। और उस धाम का जो साक्षात्कार हुआ है उसमें अनुभव होता है कि एक उल्टा झाड़ की तरह है। इस संसार को भी उल्टा झाड़ कहा गया है, ऊर्ध्व मूल अध शाखा, ऊर्ध्व मूल ऊपर है और शाखा नीचे है क्योंकि बीज ऊपर है। तो आत्मा का जो निवास स्थान है वो पांच तत्वों से पार है। तो आत्मा मन बुद्धि के द्वारा एक चित्र खींचे, एक महतत्व, अखंड ज्योति का महतत्व, और उस महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान हूं, बहुत सुंदर हूं, चमक रहा हूं, मेरी चमक चारों ओर फैल रही है, मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं शक्ति स्वरूप हूं, ये मैं अपने अंदर में सोचूं, ये चिंतन करूं, ये आत्मचिंतन आत्मबोध कराएगा। एज यू थिंक सो यू विल बिकम। तो जैसे हम ये सात गुणों का चिंतन करते हैं कि मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, आत्मा हूं, इस प्रकृति के मध्य चमकता एक सितारा हूं, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, इस शरीर से अलग हूं, और मेरा असली निवास स्थान तो पांच तत्वों से पार है। तो एक सेकंड में मन बुद्धि को, जैसे मन बुद्धि के पंख बन जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। कोई परिस्थिति मेरे सामने आई मान लो, लेकिन मैं एक सेकंड में उनसे न्यारी हो सकती हूं। जैसे बिल्ली किसी पक्षी के आगे आई, पक्षी तो बड़े मजे से दाना चुग रहा है और एकदम बिल्ली उसके सामने आई तो पक्षी घबराएगा थोड़ी, उड़ जाएगा वो, क्योंकि पता है कि बिल्ली पकड़ेगी तो उड़ जाएगा, पर बिल्ली थोड़ी उसके पीछे जाएगी, वो तो वहीं की वहीं है, पक्षी तो उड़ सकता है। पर अगर वो पक्षी भूल जाए कि मुझे पंख हैं और वहीं घबरा करके आंखें बंद कर दे तो बिल्ली पकड़ लेगी। तो आत्मा भी क्या है, पंछी है। आत्मा पंछी उड़ने में कितनी देर लेती है, एक सेकेंड। तो जो परिस्थिति मेरे सामने आई उसे घबराओ मत, मैं आत्मा हूं, इस शरीर से न्यारी हूं, एक ज्योति हूं, शांत स्वरूप हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, न्यारे हो जाओ, न्यारे हो जाओ, एक सेकेंड में न्यारे बन जाओ, वो परिस्थिति आपको कुछ नहीं कर सकेगी, आप अपने आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे। जैसे दुश्मन सामने आया उनको ढाल दिखा दी, ये मेडिटेशन एक ढाल का काम करती है, अर्थात वो दुश्मन का वार नहीं होता, हम बच जाते हैं, क्योंकि अशांत नहीं बनते हैं, दुखी नहीं होते, चिल्लाते नहीं हैं। अंतरात्मा ने अपनी शक्ति को उजागर किया, और जैसे ही हम ये महसूस करते हैं तो बिल्कुल मन उपराम एक सेकंड में हो जाता है, क्योंकि ये मंच मेरा, ये संसार मेरा घर थोड़ी है। हम पकड़ के बैठते हैं ना, पकड़ के, इसलिए दुखी होते हैं। लेट गो, एक पंछी डाली को पकड़ के रखेगा तो उड़ेगा कैसे? और देख रहा, दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं और मैं पकड़ के बैठा हूं और मैं उड़ू, इच्छा तो बहुत है, शांति मिले। उड़ना तो सीखो, पहले पंजे को हटाओ, आप उड़ सकते हो, शांति आपके पास ही है। चले जाओ अंदर और महसूस करो कि मैं कौन हूं, एक अजर अमर अविनाशी हूं। न मैं ये शरीर हूं, न मैं एक अभिनय हूं, डॉक्टर वकील इंजीनियर ये वो, ये सब मैं नहीं हूं। मैं तो एक आत्मा हूं, ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मैं शरीर से न्यारा होकर अपने शरीर और चारों ओर के दृश्यों को देख रहा हूं ऊपर से, तो इसमें मैं फंसा हुआ नहीं हूं। और अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव विचार आ भी रहे हैं, उनको एक सेकंड में मैं ब्रेक लगा सकता हूं। जैसे गाड़ी में ब्रेक पावरफुल चाहिए तो एक्सीडेंट से बच सकते हैं आप। एक सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए, उस सोच को नो कह सको या डॉट लगा सको, है ना? कोई बात हो गई, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो और भी अच्छा। गीता का सार है ये डॉट है, फुल स्टॉप है। और फुल स्टॉप लगा दिया तो क्या होगा, बच गए। अब ये सकारात्मक विचार मन में लाकर अपने बारे में और वही चिंतन करना, ये राजयोग का प्रथम कदम है। तो चलिए अब हम इसका थोड़ी देर अभ्यास करेंगे कि मैं एक आत्मा हूं, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इस देह से न्यारा एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं, मैं अजर अमर अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। मेरा मूल वतन पांच तत्वों से पार है, वो अखंड ज्योति का महतत्व है, और उस महतत्व में मैं आत्मा विराजमान हूं, और मैं शांत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप हूं। आंखें भल खुली रहे, सामने से भी प्रेरणा ले सकते हैं, इस वातावरण से भी प्रेरणा ले सकते हैं, पर मन की आंख खुद को देखे, ज्ञान के दर्पण में मन की आंख खुद को देखे, मैं कौन हूं, और अपने आप से बातें करो, अपने आप को अपनी पहचान दो, मैं एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, प्रकाश का पुंज हूं, चमकता हुआ सितारा हूं, अजर अमर अविनाशी हूं। अति सूक्ष्म दिव्य शक्ति हूं, इस शरीर से भिन्न चैतन्य सत्ता हूं, इस शरीर का मालिक हूं, ये शरीर मेरा एक वस्त्र है, ज जिसे धारण कर मैं आत्मा सृष्टि मंच पर अभिनय करती आई हूँ। अब मुझ आत्मा को वापस पांच तत्वों की दुनिया से दूर, आवाज की दुनिया से परे, प्रकृति के आकर्षण से बहुत ऊपर अपने धाम जाना है। मन बुद्धि से पहुंच जाए अखंड ज्योति के वह तत्व में, एक सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, अनंत शांति। और इस शांति की दुनिया में मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति की शक्ति को अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूँ। एकदम हल्के आत्मा स्वयं को पहचान रही है। एक चमकता हुआ सितारा हूँ। शरीर में तो टेम्पररी हूँ, इस प्रकृति के मध्य चमक रहा हूँ, पर मेरा मूल वतन बहुत दूर है और मैं एक सेकंड में वहाँ पहुँच सकता हूँ। एकदम शांत, कितनी निरसंकल्पता है। कितना हल्कापन, कितना न्यारापन। अब मैं आत्मा स्वयं को पहचान रही हूँ। इसी शक्ति को स्वयं में धारण कर फिर वापस लौटे। कर्म क्षेत्र पर और इस शांति की शक्ति के साथ कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करें। तो कर्मों में भी कुशलता आएगी और ये जीवन धन्य बन जाएगा। श्रेष्ठ बन जाएगा। सुखदाई बन जाएगा, शक्तिशाली बन जाएगा। ओम शांति शांति।